और ये जो आयत हमने देखी ना, वा तसीमु बिहब्लिल्लाह जमीया, रस्सी, तस्वुर में लाएं जरा पहाड़ पे चढ़ने वालों को। आप देखिए, जो शख्स पहाड़ पे चढ़ रहा होता है, उसकी जिंदगी का दारोमदार किस पे होता है? एक रस्सी पे। अगर रस्सी हाथ से छूटी, इतनी दूर जाके गिरेगा कि फिर उसकी शायद हड्डी भी ना बचे। यही है ये रस्सी। और वो कौन सी रस्सी है? हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह का ये कुरान है हब्लुल्लाहिल मतीन, ये है वो रस्सी। अगर इसको हाथ से छोड़ा, इतनी बस्तियों में गिरोगे कि बचोगे नहीं। और आज देख लीजिए, आज उम्मत के हाथ से क्या हुआ? ये सारी जो चीजें हम बार बार कर रहे हैं ना, मसलक की और इख्तलाफत की, इसमें कॉमन फैक्टर एक ही है कि लोगों के हाथों से कुरान हटा के किताबें दे दी, अपनी लिखी हुई, दूसरों की लिखी हुई, फिक के नाम पे कहीं कुछ कहीं कुछ। और बाज किताबों के तो नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अकीदत है उनके साथ कि वो किताबें लोग कुरान से ज्यादा शौक से पढ़ते हैं। एक खातून ने नाम लेके कहा, मैं तो सुबह उठ के नमाज के बाद जब तक वो किताब ना पढ़ लूँ मैं हटती नहीं हूँ। किसी को पूछे दीन के, वो एक और किताब का नाम लेते हैं। बड़ी मारूफ किताबें हमारे कल्चर में, इसलिए नाम नहीं ले रही आपके सामने। और कुरान देख लीजिए, कितने शौक से सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, क्या उतने शौक से कुरान भी पढ़ते हैं? और जितने कुरान पढ़ने वाले, क्या उनको कुरान का तरीका भी समझ में आता है? कहा नहीं। अकेले नहीं, जमीयन सारी किताब को पकड़ो और सारे मिलके पकड़ो। तफरकों में ना पढ़ो, इख्तलाफात में ना पढ़ो। फिर अल्लाह तआला ने हमें ये भी बता दिया इन सारी पिछली आयतों में कि देखो, तुम लोग किनारे पे थे आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले। मक्का और मदीना के अंदर हालात बड़े अबतर थे। सिर्फ मदीना में या अरब में कहते हैं 1700 जंगों के निशान मिलते हैं। हर पथ पे लड़ाई होती थी। औस और खजरत एक दूसरे को देख नहीं सुखाते थे, लेकिन बाद में वो देखिए कैसे जुड़े। कुंतुम अला शफा खुफरतिम मिनन नार। क्या आज उम्मत मुस्लिमा शिफा खुफरतिम मिनन नार नहीं है? क्या आज आप नहीं देख सकते कि कितने तफरके हैं? आज हमने अल्लाह के कलाम की रस्सी को छोड़ा, हम ठोकरों में आ गए। जैसे एक तस्बीह की गिरा खुल जाती है ना, तो वो जो दाने बिखरते हैं, फिर किसी को परवाह नहीं कि वो किसी के पाँव में आया या वो किसी जगह चला। आज उम्मत बिखरी हुई है। इस वक्त का सबसे बड़ा जिहाद क्या कि उम्मत को एक कर दो। इस वक्त सिर्फ अपनी बिखरी हुई कोशिशों को एक कर दो। आज हम इंफरादी तौर पर बहुत अच्छे होते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमें कुरान पढ़ना तो आता था, लेकिन हमें पढ़ाना नहीं आता था, और हम पढ़ाने लग जाते हैं। हम उस वक्त ये सोच के बैठ जाते हैं कि मैंने कुरान पढ़ा, ये पढ़ाने का मेरा फर्ज है। लेकिन हम वो चीज़ नहीं लेते कि जो इस्लाम के अंदर एक इज्तमाईयत की फिजा पैदा करती है। एक अकेला पायलट के जहाज को चला सकता है, अगर उसके साथ उसकी पूरी टीम ना हो। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए, हजारों की तादाद में तो सिर्फ उनके स्टाफ मेंबर होते हैं। आज हमने बस यही सीखा कि दीन सीख लो, फिर पढ़ाना शुरू कर दो। आज छोटी 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 माशाल्लाह बहुत सी कोशिशें हैं, उससे अवेयरनेस भी आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ लोगों के अकायद संवर हैं, उनकी नमाजें संवर हैं। लेकिन ये आयतें दावत देती हैं कि तुम एक जमीयत बन के निकलो। किसी जगह का मुकद्दर कब बदलता है? जब वहां एक इज्तमाई कोशिश होती है जिसमें हर बंदा अपनी एफर्ट डालता है। फिर उसके बाद उम्मत मुस्लिमा का जो वजूद है वो रहता है। फिर आप देखिए कि एक वहदत तो टूटी थी ना मुसलमान से अलग होके, वो कैसे कौमियत पे आ गए। ये पाकिस्तानी मुसलमान है, ये अरबी मुसलमान है, ये ब्रिटिश मुस्लिम, ये अमेरिकन मुस्लिम, ये टर्म्स थी। फिर उसको हमने मजीद तोड़ा, पाकिस्तानियों को फिर तोड़ा, ये सिंधी मुसलमान, ये पंजाबी मुसलमान और ये बलोची मुसलमान, ये टूटे। फिर वो सारे फिर आगे टूटे। अगर आप एक ग्राफ बनाए ना तो यूं फटेगा। फिर वो पंजाबी आगे फिर टूट गए, ये शिया मुसलमान, ये सुन्नी, ये वहाबी, ये फुलां फुलां। हम उम्मत कहाँ रहे? हम तो भीड़ बन गए। हम तो आज एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो एक दूसरे के लिए नाकाबले बर्दाश्त हुए। हम दूसरों को अल्लाह के दीन से कैसे जोड़ेंगे? इसलिए हम सबको इस वक्त जरूरत है इस बात की, अपने जहन में कम अज कम इस वक्त इस चीज का शौक पैदा कर लें कि मैंने अपनी निस्बत सिर्फ इस्लाम के साथ रखनी है। एक आलिम है मौलाना मोहम्मद यूसुफ, कहते हैं कि जो किसी एक इलाके को अपना और बाकी इलाकों को गैर समझता है, वो उम्मत को ज़िबह करता है। उम्मत ज़िबह हो जाती है। और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की मेहनतों को ज़ाया कर देता है। और आज वो देखिए कि कैसे उम्मत ज़िबह हो रही है। और मुझे ये भी लगता है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को वो काम दिया जो पुलिस का है। आप देखें शहर में कंट्रोल संभालने के लिए पुलिस मैन खड़े होते हैं ना, उनका काम क्या होता है कि जरा सा गलत काम करने लगो फौरन टोक दें। हर वक्त तो नहीं पुलिस मैन खड़े होते आपको टोकते, सिर्फ वॉच करेंगे। यही काम उम्मत मुस्लिमा का था। अगर लोगों को शऊर दे दिया जाए ना, तो उसके बाद आप देखिए कि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक जरूरत है इंतजाम बनाने की। मैंने इस पर बहुत सोचा, और ऑफकोर्स आप सोचेंगे कि अब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या करें? एक लड़ी में पिरोया हुआ हल जो मेरे सामने इन सारी बातों पे तदब्बुर और गौर का आया, वो क्या था? किस वक्त देखे कि हर बंदे ने अपनी इज्तमाई कोशिश करके एक मस्जिद बनाई, फिर चंद लोग उसको फैलाते गए, इदारा बनाए। सारी चीजों को अगर हम बैक पे लेके जाए ना, इसका हल क्या है कि कोई भी अपने मुल्क का मुसलमान हुक्मरान जो है वो सारी मस्जिदों को बैन करे। ये मस्जिद किसी का प्राइवेट मैटर नहीं है, ये होटल या रेस्टोरेंट नहीं है कि जिसको जो खाना पसंद आया कोई चाइनीज बना ले, कोई फुलां बना ले। सारी मस्जिदें गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए, वो वहां से एक नसाब देंगे, वो एक तालीमात देंगे, उसके तहत होंगी। आज भी शायद इसकी एक अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल थोड़ी सी सऊदी अरब में हमें मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि सऊदी अरब पहले अपने मुल्क में जो मस्जिद बनाते हैं, फिर दुनिया के मुख्तलिफ हितों में भी बनी हुई है, और वो फिर अपना कंट्रोल भी रखते हैं, और बाज़ लोग अल्लाह ताला उनको हिदायत दे वो इसको भी पसंद नहीं करते। इसी चीज से मुझे एक जगह मालूम भी हुआ कि एक जगह उस मुल्क की नॉन मुस्लिम हुकूमत ने एक पीस ऑफ लैंड ऑफर किया कि मुस्लिम्स अगर मिल के यहाँ अपना कोई बनाए, और सऊदी हुकूमत ने स्पॉन्सर किया कि हम यहाँ इस लैंड पे गवर्नमेंट फ्री लैंड देगी, सारा माल जो है वो सऊदी हुकूमत इन्वेस्ट करेगी और वहाँ मस्जिद बनेगी और उसका कंट्रोल सऊदीया में होगा। और आपको पता है क्या हुआ? जो वहाँ मस्जिदें थी 10-15 जो शहर की, वो मुत्तफिक ही नहीं हुए इस बात पे कि हम सऊदी वालों को एक कंट्रोल नहीं देना चाहते, और आज वहाँ गैर मुस्लिम इमारत मौजूद है। हम मुसलमानों ने अपना नाम नहीं छोड़ा, वो हर एक ने कहा मुझे कंट्रोल दो तो मैं तैयार हूँ, मुझे दो मुझे दो, और वो शहर के सेंटर में बेहतरीन जगह। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि सब इनफरादी चीज़ों को बंद किया जाए, फिर उसके बाद आप कहेंगे आप गवर्नमेंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड फेज क्या है कि आप गवर्नमेंट ऐसी हो कि जो अल्लाह के दीन को समझने वाली और इस्लामी रूप हो, अब वो गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? बिलफर्ज आज का दौर देखिए जमहूरियत का दौर है। हम नहीं कहते बड़ी बड़ी बातें कि खिलाफत आए इमामत आए, हमें बैकवर्ड चलना पड़ेगा, स्टेप्स में चलना। अब हमारा एक सेकंड गोल हो गया कि एक ऐसी गवर्नमेंट चूज करनी है कि जो वाकई काल अल्लाह व काल रसूल पे हो, सही अकायद की हामिल। अब उसके लिए मुझे और आपको क्या काम करना होगा कि हमें वो अवाम तैयार करने हैं कि जो ऐसे लोगों को सामने लाएं, और वो चंद लोग जो वाकई दीन और दुनिया के नाते से बिल्कुल सही सोच रखते हैं उनको सियासत में आगे होना होगा। फिर आम अवामुन नास जो है ना, उसको आप इस बात की तालीम दें कि देखो कैसे लोगों को मुंतखब करो, और ये काम कैसे होगा बताइए? अवाम को शौर कैसे मिलेगा? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक। पीछे बात आ गई, अवाम के लेवल पे अगर मैं और आप, हमारा रोल क्या है कि हम जहां जहां मौजूद हैं अपने इलाकों में, अपने इदारों में, अपने घरों में, हम लोगों को अल्लाह के कलाम से जोड़ दें, एक ऐसी अवाम पैदा करें कि जो अच्छे हुक्मरानों को सामने लाए। हम कहते हैं इस हुक्मरान का तख्ता उलट दो, इसको निकाल दो, उसको कर दो, फिर क्या होगा? कोई दूसरा वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि लोगों को शऊर नहीं है। वो तो एक वक्त के खाने के लिए आपको वोट देने को तैयार है, उनको क्या लगे? इस वक्त काम मेरा और आपका और इस वक्त का उम्मत मुस्लिमा का यूनिवर्सल लेवल का जो जिहाद है ना, वो इस कलाम की तालीमात को आम करना है। पीछे से पलट क्या है, तालीमात आम कीजिए। इस वक्त यकीन करें कि जितना माल असलहे पे लगता है ना, उससे ज्यादा माल इल्म की नशर इशात पे लगे। लोग नहीं खरीदते ना, उनको फ्री बांटो, लेकिन इस तरह नहीं बांटो कि वो उसको बेकार समझे, फिर उसको चेस भी करो, फिर उसको देखो क्या हो रहा है। अगर लोग नहीं आते तुम चले जाओ उनके पास, अगर लोग सीरियस नहीं है तुम उस चीज को खूबसूरत करके दिखाओ, उनको एक मुश्किल लगती है वो बात, उसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट डाल लो। इस वक्त हमारा सबका गोल क्या हो कि पहले खुद सीखना, और फिर उस पर आखिरी बात आ जाए कि हम दूसरों को कब बताएंगे। खुद सीखें, खुद नहीं सीखते तो पढ़ी हुई बातें बता दें। यानी एक और भी फितना जिसने उम्मत को तोड़ दिया, और वो क्या है कि जब तक 7 मजमून ना पढ़ लो तुम कुरान खोल ही नहीं सकते। आप जाके मालूम करें चंद लोगों से, वो आपके इस कुरान पढ़ने पढ़ाने को फितना कहेंगे, वो औरत की आवाज को फितना कहेंगे, वो औरत के कुरान पढ़ने पढ़ाने को कहते हैं कि ये कहाँ से रिवाज आ गया। नतीजा क्या हुआ? वो कहते हैं पहले 10 इल्म पढ़ो फुलां 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 फुलां, और उसके बाद कुरान खोलो, वरना तो ये तुम पढ़ ही नहीं सकते। यही चीज थी जिसने लोगों को इतना डरा दिया इस कुरान से, इतना ऊपर रख दिया कि हाथ भी नहीं लगते। नहीं, इसको खुद नहीं पढ़ सकते, पढ़ी हुई बातों काम करें। सीडीज, कैसेट, ऑनलाइन क्लासेस कितना मौजूद है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आज की इन सारी बातों के बाद अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, रमजान का महीना है, घर घर ये काम हो रहा है, जहां आप समझते हैं ना कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो रहा है, आप लोगों को जोड़ें। 10-10 लोगों को अगर आप जाके बेल टॉक से जोड़ देते हैं ना कि आप क्लासेस में आ जाए, जहां भी है, यकीन करें कि आपने आज के इस आधे घंटे का हक अदा कर दिया। फिर आप जुड़े, फिर दुआ करें कि अल्लाह इस रमजान के बाद अब मैंने एक दफा फिर कुरान से जुड़ना है, मैंने अब इसका वो सफर करना है कि जो मुझे लाए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब अल्लाह ने चाहा कि लोग अच्छे होते हैं फिर हुक्मरान अच्छे होंगे, हुक्मरान अच्छे आएंगे तो वो सारी मस्जिदों को अपने काबू में लेंगे, जब सारी मस्जिदें काबू में होंगी तो फर्क खत्म हो जाएगा। वरना याद रखिये कि ये सिर्फ बातों से करने वाला काम नहीं, और अल्लाह ताला इसमें हमें हमारा हिस्सा डालने वाला बना दे, क्योंकि जब हम अपना हिस्सा डालते हैं ना तो याद रखिये कि फिर उस वक्त अल्लाह हमें बचाता है। वरना तारीख खोल के देख लीजिए कि वो दौर भी एक गुजरा है कि वो कौम जिस पे अल्लाह को इतनी उम्मीदें हैं, कुन तुम खैर उम्मत नुखरिजत, जिस कौम से अल्लाह को इतना प्यार है, आप देखिए कि उसी कौम को लोगों ने गाजर मूली की तरह काटा। वो क्यों कटे? उस वक्त मुसलमानों की जो किताबें थी वो दजला और फरात में जब डाली गई तो उसकी स्याही की वजह से कई दिन तक पानी काला रहा था। क्यों? कि ये किताबें कोई पढ़ता नहीं है। मुसलमानों की लाइब्रेरियों को अस्तबल बनाया गया। पढ़ के देखिए जरा आप समरकंद और बुखारा और ताशकंद की हिस्ट्री, और मंगोलों के हमलों का जिक्र पढ़ के देखिए कि आज क्या हाल है, कि वो उनको अल्लाह ने खत्म कर दिया। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो वाइप आउट कर देता है। وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, جو مرتد ہوتے پھر جائے, موسٹ ویلکم, گو ہیڈ, جاؤ جاؤ, بس پاک کرو, فرشتوں ان کو نکالو, لاؤ کسی دشمن کو ان کے سر پہ اور ان کو ختم کر کے نکالو, اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نئے لوگوں کو لے آئے گا. آج آپ دیکھیے کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں امت مسلمہ کے لیے, صرف عرفات کے میدان میں دیکھیے 25-30 لاکھ مسلمان دعائیں کرتے ہیں, اللہ امت پہ رحم کر دے. کوئی لگتا ہے ایک بھی دعا قبول ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے, پھر تم دعائیں کرو گے اور اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی تمہاری دعاؤں کی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آج واقعی لگ گیا. کس طریقے سے آج امت مسلمہ کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امت کا درد دے دے, اور اللہ کرے کہ ان ساری باتوں کو ہم اپنے پلے سے باندھ کے اپنا اپنا رول پہچانے. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں, یہ کوئی نعرے نہیں, یہ وہ بات ہے کہ جس میں اگر سننے والوں میں چند لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے نا کہ میری ذمہ داری کیا ہے, اور جو اس کام میں اس وقت حصہ ڈال رہے ہیں نا, پھر ان کو اپنی قیمت پتہ چل جائے کہ اللہ ان سے کروا کیا رہا ہے, تاکہ وہ اور جمے, وہ اور اس پہ اپنی محنتیں لگائیں. یقین کریں نیند تو خام خواہ اڑ جاتی ہے آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کام تو نے بڑا دیا ہوا ہے, اتنی بڑی بات ہے, چلو اب میں اس کام کو لے کے چلتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم جیسے ناکارا لوگوں کو اس کام کے لیے چنتا ہے, تو اللہ مرتے دم تک چنا رکھے. کسی کو نہیں پتا ایک غلط موڑ اس کو کہاں منزل سے نیچے گرا دیتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور باتیں جو اہل کتاب ہی کے ناطے سے فرماتے ہیں, لَيْسُ سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہ سارے کے سارے یکساں نہیں, بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے, جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں, بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کرے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی, یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہی اسی میں پڑے رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا, یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا, جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا, بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ تھی آیت نمبر 113 سے 117. اس کا عنوان ہے نیکیوں میں مسابقت کرو, یعنی آگے بڑھو. مسابقت یعنی مسارعت, سرعت, تیزی سے بھاگو. وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, زیادہ سے زیادہ آگے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس بات کی خبر دے دی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سر عام سامنے نہیں آتے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے نبی کی جب دعوت آئی تو یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور دل سے اس سچائی کا اقرار کیا, فوراً پہچان گئے, دل عاجز ہوئے, ٹوٹے. ساتویں پارے کے شروع میں انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ بھی پڑھیں گے. ایک طرف ان کے سامنے حضرت موسیٰ کا دین تھا جو تاریخی عظمت اور روایتی تقدس کے طور پر موجود تھا, اور دوسری طرف دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جن کی پشت پر ابھی کوئی بھی نہیں تھا, صرف دلیل کی طاقت تھی, کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. ایسے وقت میں کسی شخص کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. ایک طرف سجا سجایا, بالکل ویل آرگنائزڈ, اور بالکل ایک ایسا دین ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وقت لگ چکا ہوتا ہے, وہ دین لوگوں کے اندروں مشہور ہو چکا ہوتا ہے, اور دوسری طرف ایک اٹھتی ہوئی خاموش آواز, ایک کمزور سی آواز جو مکہ کی پہاڑیوں سے اٹھی. ایسے وقت میں وہی لوگ آگے بڑھے جنہوں نے اندر کی رکاوٹوں پہ قابو پایا اور وہ کھڑے ہو گئے. ایسے وقت میں راستے میں کچھ قربانیاں آتی ہیں, دینی پڑتی ہیں, مال اور اولاد کی قربانی, لیکن وہ لوگ جنہوں نے ابھی دین کی سچائی کو پایا نہیں ہوتا, وہ ایسی قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ مال اور اولاد جو تمہیں آج اللہ کے دین کے تقاضوں سے روک رہے ہیں, کل ایک ہوا چلے گی اور وہ کھیتی جو تم نے لگی لگائی تھی, اس کسان کی طرح جس کی پورے سال کی محنت ایک ہوا کی وجہ سے برباد ہوتی ہے, اسی طرح جب موت کی ہوا چلے گی تو تمہارا سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنے مال اور اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا تو ذرا سوچو تو صحیح کہ کل کیا ہوگا. اتنا خم بڑا کوسچن مارک ہے یہ. میں تو سوچتی ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی, میں کہتی ہوں اولاد والوں کو تو پتہ نہیں کیسے نیند آتی ہوگی, مجھے امت کا سوچ کے غم آتا ہے. میں کہتی ہوں بنے گا کیا, آج بنے گا کیا؟ آپ دیکھیے 17 سال کا محمد بن قاسم تھا, اس نے ایک عورت کی آواز پہ درس و تدریس کو چھوڑا اور جہاد کے لیے نکلا اور سندھ کو فتح کر لیا. آج کے 16-17 سالہ لڑکوں سے جا کے پوچھیے ان کا مزاج کیا ہے, آپ ان سے پوچھے خاندان کی لڑکیوں میں سے کس کے بال کس رنگ کے ہیں, کس کی آنکھیں کیسی ہیں, کون موٹی ہے کون پتلی ہے, بہترین قسم کا جنرل نالج ہوگا. उनसे जाके पूछिए जरा कुरान पाक में सूरतें कितनी है। उनसे पूछिए सिर्फ 10 सहाबियात के नाम बता दो, 10 सहाबियों के नाम बता दो, कुरान पाक की 10 सूरतों का मक्की होना और 10 का मदनी होना बता दो। इल्ला माशाल्लाह, हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। कहीं हम उन लोगों में तो नहीं जो अपने आप को कामयाब समझते रहे। हमने सोचा हम कामयाब हैं, हम अपने से कितने अच्छे हैं, सारे खानदान में मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे घर में दाने हैं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। लेकिन ये दाने पानी कब तक है, जब तक मौत की हवा नहीं चलती। असल अकलमंद वो है जो अपने बात के लिए सोचे। अल्लाह ताला ने कहा मसलु मा युनफिकुना फी हाजिल हयात दुनिया का मसली रीहिन फी हसर। ये दुनिया का खर्च तो सारा कहाँ है, कितना खिलाओगे, कितना पिलाओगे, कितने लाड देखोगे अपने और अपनी नस्लों के, ये सब पानी बन जाएगा। असल बात यह है कि अगर हमने अपने दिल में इस जज्बे को पैदा ना किया और उसके बाद फिर अपनी नस्लों के दिल में ना पैदा किया, तो याद रखिए हम बचेंगे नहीं। और अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारी की फिक्र लगा दे।